हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। तभी अनामिका ने थोड़ी घबराई हुई आवाज में कहा, दादाजी, झलक में वापस मुंबई जाने का फैसला कर लिया है, और कहीं ऐसा ना हो कि वो लोगों को किसी तरह का नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि आप नहीं जानते सिद्धार्थ खुराना के बारे में। वो भले ही एक बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, लेकिन वो एक नंबर का बहुत बड़ा गुंडा है। मैंने उसके बारे में सारी बातें पहले ही पता लगा ली थी। दादाजी ने ये सुनकर गहरी सांस ली और फिर गंभीर स्वर में कहा, मुझे नहीं लगता कि अब हमें अपनी बेटी के लिए किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत है। और वैसे भी अनामिका, मैं तुम्हें ये बता दूं कि वो कोई आम लड़की नहीं है। हमें तो उसे लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। रही बात उन लोगों की, तो हम उन्हें वहां वहां से तोड़ेंगे कि वे कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, और हम उनकी पूरी जिंदगी भर की कहानी बदल देंगे। दिग्विजय जी की बातों में कहीं ना कहीं उनका गुस्सा साफ झलक रहा था। जिस तरह से आज उन्होंने अस्पताल में अपने बेटे की हालत देखी थी, उस नैना ओबेरॉय का नाम सुनते ही उन्हें पैनिक अटैक आया था। ये सब देखकर उनका अंदर का खून खौलने लगा था। उन्होंने इतने सालों तक अपने बेटे को हर जगह ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन ओबेरॉय परिवार ने अपनी पावर और पोजीशन का इस्तेमाल करके ना तो उसे जेल से बाहर की दुनिया देखने दी और ना ही उसके बारे में किसी को कुछ भी पता लगने दिया। ये तो उनकी किस्मत थी कि उनका बेटा उन्हें वापस मिल गया, लेकिन अब उन्होंने ठान लिया था कि वे उन लोगों से ऐसा हिसाब चुकाएंगे जिसकी वे सोच भी नहीं पाएंगे। फिलहाल अनामिका की बात भी उन्हें पूरी तरह से सही लग रही थी, क्योंकि अपने दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ये बात दिग्विजय सिंह जी अच्छी तरह समझते थे। इसी वजह से उन्होंने जल्दी ही किसी को एक मैसेज किया और ठान लिया कि अब वे उसी से मदद मांगेंगे। ये सोचकर वे वहां से चले गए। वहीं आरव जी थोड़े मायूस से बैठे रह गए थे, लेकिन अनामिका ने तुरंत उनके हाथ को पकड़ लिया और उनकी ओर देखते हुए बोली, आपको इस तरीके से मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है पापा, और वैसे भी आप नहीं जानते कि आप मेरे रोल मॉडल हैं। मैं आपको कितना पसंद करती हूँ, आपसे कितना प्यार करती हूँ, ये आप सोच भी नहीं सकते। ये कहते हुए अनामिका की आंखें छलक आईं। तभी स्नेहा जी भी आगे बढ़ीं और साथ ही सौरव जी ने आगे बढ़कर उसे शांत कर दिया। वहीं रोहन अपनी शरारत भरी आवाज़ में जल्दी से बोल पड़ा, क्या अनामिका दीदी, अब चलिए ना मेरे साथ, मुझे आपको अपनी ड्राइंग दिखानी है। आज मैंने कितनी सारी चीज़ों की ड्राइंग बनाई है, प्लीज़ 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 आप मेरे साथ चलिए। ये बोलकर वो कहीं ना कहीं अनामिका की उदासी को दूर करने के लिए उसे अपने साथ लेकर चला गया। उधर कमरे में झलक के दिल की हालत काफ़ी अजीब हो रही थी। उसे एक एक करके सब कुछ याद आने लगा, सिद्धार्थ खुराना से उसकी पहली मुलाकात और फिर वो रात जब किस तरह बेदर्दी से सिद्धार्थ ने उसके साथ वन नाइट स्टैंड किया था। ये सब याद आते ही उसकी आंखें अचानक भर आईं। वो सोचने लगी कि उसने उसकी कार एक्सीडेंट में जान बचाई थी, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा, उसने उसके साथ गलत किया, हर जगह उसे नीचा दिखाया। जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो उसके साथ नहीं था। लेकिन झलक को ये बात भी अच्छे से याद थी कि हाथी गांव में किस तरह जंगली जानवरों के हमले के दौरान सिद्धार्थ ने आकर उसकी जान बचाई थी। कहीं ना कहीं ये सारी बातें उसके दिमाग में पूरी तरह घूम रही थीं। वो सिद्धार्थ द्वारा किए गए एहसानों को चाहकर भी भूल नहीं पा रही थी, लेकिन जो कुछ भी उन लोगों ने उसके साथ किया था, खासतौर पर दादी और नैना ओबेरॉय ने, जिस तरह उन्होंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की, पूरे समाज के सामने उसे गंदी नाली के कीड़े से भी बदतर एक बेकार कचरे जैसा महसूस कराया, तो भला वो ये सब बातें किसी से कैसे कह सकती थी। झलक ने अंदर ही अंदर अपने आंसुओं को रोक लिया। उसने एक भी आंसू अपने गालों पर बहने नहीं दिया और मन ही मन खुद से बोली, नहीं झलक, अब ना तो तू टूटेगी और ना ही किसी के लिए कमज़ोर पड़ेगी। अब जो तेरा अंदाज है वही रहेगा। मेरी ज़िंदगी में अब कभी कोई मर्द नहीं आएगा, किसी की भी मेरी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं होगी, कोई भी नहीं। ये कहते हुए झलक कुछ अलग ही लग रही थी। वहीं दूसरी ओर पूरी तरह से सारे अमीर लोगों को इनवाइट कर दिया गया था। इस वक्त एक कार्ड आर्यन रायचांद के हाथों में था। उस कार्ड को देखकर उसे झलक की याद आ गई। उसका मन किया कि वो जाकर एक बार आकांक्षा से मिले। आखिरकार आकांक्षा का चेहरा झलक से काफी हद तक मिलता जुलता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। तभी उसके पिता ने तुरंत उसे कहा, तुम्हें इस तरीके से खुद को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि तुम इस शादी में बिल्कुल जाना नहीं चाहते हो, और वैसे भी बेटे, इतने अमीर लोगों के बीच तुम जाना पसंद नहीं करते, लेकिन बेटा, ये अमीर लोगों की शादी है और अमीर लोगों से कनेक्शन रखना बेहद ज़रूरी होता है। यहाँ शहर भर के VIP लोग आएंगे, इसीलिए तुम्हें इस शादी में जाना ही होगा। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? ये सब सुनकर आर्यन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और सीधा अपने कमरे में चला गया। वहीं उसके पिता धीरज अब जल्दी ही अपनी बेटी मीरा को फ़ोन करने लगे थे, ताकि वो सिद्धार्थ की शादी के बारे में उसे जानकारी दे सके। उधर मीरा ने अपनी ज़िंदगी अपनी ही शर्तों पर जीने का फ़ैसला कर लिया था। फिलहाल वहीं दूसरी ओर नैना ओबेरॉय खुशी से ज़मीन पर पाँव ही नहीं रख पा रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और चमक थी। आखिरकार अपने मनपसंद आदमी के साथ एक रात गुजारने के बदले आज उसे इतना सब कुछ मिला था और उसने उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसे लगा था कि शायद वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, लेकिन बच्चा कंसीव होने के बाद उसने झलक को कितनी ही बार गिराने की और नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई, क्योंकि उन दोनों बच्चों में भी ये बात कन्फर्म हो चुकी थी कि उसका असली बच्चा कौन सा है। और जब पैदा होने के बाद उसे इस बात के बारे में पता चला कि आकांक्षा उसकी बेटी है, लेकिन झलक असल में अपने बाप की बेटी है, तो उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। उसने जान लिया था कि वो झलक की जान ले लेगी। वैसे भी झलक की उसकी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं थी। फिलहाल ईशान जल्दी ही नैना के सामने मौजूद था। वो उसे बड़ी ही तारीफ भरी नजरों से देख रहा था। उसने अपने हाथ उसके गले में डाल दिए और बोला, वैसे मानना पड़ेगा मेरी राजनेता बीवी, भले ही तुम्हें अभी अपनी पहचान समझ में ना आ रही हो कि तुम कितनी बड़ी राजनीतिक करियर बनने के लायक हो, लेकिन मैं तो तुम्हें पहली नजर में ही पहचान चुका था। ये सोचते हुए कहीं ना कहीं ईशान के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई थी। तभी नैना ने उसकी ओर देखते हुए कहा, देखो मेरे सामने मुझसे झूठा प्यार जताने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का इस्तेमाल किया था इस समाज में अपनी पावर पोजिशन बढ़ाने के लिए, और तुम ये भी अच्छी तरह जानते हो कि प्यार मुझे आरव मल्होत्रा किया करता था। यकीन मानो उसे देखकर काफी हद तक मैं भी उसे चाहने लगी थी, लेकिन उस वक्त तुमने मुझे अपनी दौलत का नशा इस कदर मेरे दिमाग पर हावी कर दिया था कि दौलत के लिए मैंने आरव को धोखा तक दे दिया। ये सुनते ही ईशान ने तुरंत नैना को अपने करीब खींच लिया, उसके पेट पर हाथ रखकर उसे सीधे अपने सीने से लगा लिया और बोला, तो क्या हुआ, भले ही तुम्हें आरव से प्यार था, लेकिन तुम्हें उसके साथ एक रात गुजारने का मौका तो मैंने ही दिया था, क्या तुम भूल गई? तब नैना की आंखों के सामने वो रात घूम गई जब उसने जबरदस्ती हालात ऐसे बना दिए थे कि आरव के पास उसके साथ रिश्ता बनाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था।
फिलहाल नैना ने तुरंत खुद को उससे दूर करते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो सब कुछ मैंने तुम्हारे कहने पर किया था, और अब तुम इस तरह की बातें करके मुझे परेशान नहीं कर सकते, समझे तुम? ईशान ने मुस्कुराते हुए उसे थाम लिया और बोला, अरे सॉरी जान, मैं तो बस तुम्हें थोड़ा से परेशान करने, थोड़ा सा मजाक करने की कोशिश कर रहा था, मेरा इरादा कभी भी तुम्हें ठेस पहुंचाने का नहीं था। ये कहते हुए ईशान ने धीरे से नैना को अपने करीब खींच लिया। ऐसा लग रहा था मानो वे अपनी जिंदगी की खुशियों का दिल खोलकर स्वागत करना चाहते हों, इस बात से बेखबर कि झलक एक सैलाब की तरह उनकी ओर बढ़ रही है जो न सिर्फ उन्हें बर्बाद कर देगा बल्कि इस लायक भी नहीं छोड़ेगा कि वे कहीं मुंह दिखा सकें। उधर आकांक्षा इस वक्त खुशी से अपने कमरे में झूम रही थी। जिस तरीके से सिद्धार्थ ने उसे कहा था कि शादी के बाद हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, उसे एक अलग ही स्तर का सुकून दे गया था। फिलहाल आज वो बेहद खुश थी क्योंकि इस वीक वो मिसेस सिद्धार्थ खुराना बनने वाली थी। इस वक्त वो झलक की तस्वीर देखते हुए बस एक ही बात दोहरा रही थी, मेरी जान झलक, मेरी इन खुशियों के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ तुम हो, मेरी प्यारी सौतेली बहन। तुमने इतनी जल्दी मरकर ठीक नहीं किया, काश तुम वापस आ जाती और मेरी इन खुशियों को देखती, कितना मजा आता ना, रियली बहन, आई मिस यू। ये कहते हुए आकांक्षा की मुस्कान बड़ी ही घटिया और साजिश से भरी हुई लग रही थी।